दिन भर 19 मई रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। सातवें चरण के तहत 59 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही पूरी हुई 17वीं लोकसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया। आखिरी चरण में भी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई नकदी शराब और ड्रग्स।
टोटल कैश सीजर हैज बीन ₹839.03।
आखिरी चरण का मतदान खत्म होते ही समाचार चैनलों और एजेंसियों ने जारी किए एग्जिट पोल। जानेंगे क्या कहता है किसका अनुमान। जानेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच फिर क्यों उभरा है विवाद।
लेकिन
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। भारत की 17वीं लोकसभा के लिए आज शाम 7वें और आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो गया। आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 59 सीटों पर वोट डाले गए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक 60.21% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान प्रतिशत के मामले में 73.05% वोटिंग के साथ पश्चिम बंगाल पहले और 49.92% मतदान के साथ बिहार आखिरी नंबर पर रहा। चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। सूडान मिलिट्री काउंसिल के उपाध्यक्ष मोहम्मद हमदान ने कहा है कि सोमवार को प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें कल तक मीडिया के सामने लाया जाएगा। उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है और कबूलनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। न्यायिक जानकारों ने इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज देखा है। आपको लग सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते। ये थे सूडान मिलिट्री काउंसिल के उपाध्यक्ष के शब्द। वहीं स्थानीय मीडिया का कहना है कि सूडान के लोग पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने के बाद मोहम्मद हमदान के उदय से बेहद नाखुश हैं। सूडान में पिछले महीने तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद बशर अल असद को पद छोड़ना पड़ा था। अब वहां सेना और नागरिकों के सहयोग से मिलीजुली सरकार बनाने की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड की जनता आज एक जनमत संग्रह में हिस्सा ले रही है। जनमत संग्रह इस बारे में है कि क्या स्विट्जरलैंड को भी यूरोपीय संघ के नियमों की तर्ज पर अपने गन लॉ कड़े करने चाहिए। यूरोपीय संघ ने स्विट्जरलैंड में बंदूक से होने वाले अपराधों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है, जबकि वहां शूटिंग एक लोकप्रिय खेल है। स्विट्जरलैंड ईयू का सदस्य नहीं है, लेकिन 2015 में हुए पेरिस हमले के बाद इसने ईयू के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया था। इस बारे में सुनते हैं स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों की राय।
Nouvelles obligations liées à la détention d'armes paraissent pas très contraignantes et
एक शख्स ने कहा कि उसे नहीं लगता कि नए कानून लोगों की आजादी छीनते हैं। एक अन्य शख्स ने कहा कि सिर्फ एक कानून की वजह से स्विट्जरलैंड को यूरोपीय संघ से अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। ये थे स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की राजधानी काहिरा में पिरामिडों के पास सैलानियों की एक बस में धमाके की खबर है। इस धमाके में अब तक 17 लोगों के घायल होने के बारे में पता चला है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि हमले के पीछे किसका हाथ है। भारत की जानी मानी एथलीट दुती चंद ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो समलैंगिक हैं और अपने गांव की एक लड़की के साथ रिश्ते में हैं। 23 वर्षीय दुती चंद वही एथलीट हैं जिन्हें महिला वर्ग की दौड़ में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनके शरीर में पुरुष हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। हालांकि बाद में ये रोक हटा ली गई थी। माना जा रहा है कि दुती अपने समलैंगिक रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। हालांकि भारत में समलैंगिक शादियों को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बलात्कार या मां की सेहत को होने वाले खतरे के अलावा बाकी सभी मामलों में गर्भपात के खिलाफ हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। भारत में आज लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के तहत 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इसी के साथ 11 अप्रैल से शुरू हुई और एक महीने से ज्यादा समय तक चली मतदान की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब से ठीक 3 दिन बाद यानी कि 23 मई को वोटों की गिनती शुरू होगी। उसी दिन गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है। नतीजों के अनुमान को लेकर अलग अलग चैनलों और एजेंसियों को एग्जिट पोल के उनके जो एग्जिट पोल हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे आखिरी चरण के तहत आज हुए मतदान की। आज पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की भी 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। कुल मिलाकर 59 सीटों पर आज वोट डाले गए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक इस चरण में 60.21% मतदान दर्ज किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। यहां पिछले चरणों में मतदान के दौरान हिंसा की बहुत खबरें आई थीं और इसी कारण आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार को समय से पहले ही रोकना पड़ा था। आज कैसे हालात रहे जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पीएम तिवारी के पास, जो कोलकाता से हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। जी पीएम तिवारी जी, आज किस तरह, क्या आज भी कोई हिंसा देखने को मिली?
हाँ, पश्चिम बंगाल में पहले 6 चरणों के दौरान काफी हिंसा हुई थी और सातवां चरण भी अपवाद नहीं रहा। आज भी तमाम जिन इलाकों में वोट पड़े वहां से तृणमूल और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आई। कम से कम 3 बीजेपी उम्मीदवारों ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया और उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ भी कई जगह नारे लगे गो बैक। और कोलकाता उत्तर के उम्मीदवार राहुल सिन्हा, डायमंड हार्बर में नीलांजन राय जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन पर भी हमले हुए। और सबसे ज्यादा हिंसा हुई भाटपाड़ा, एक इलाका है नॉर्थ 24 परगना में, जहां अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर टीएमसी की ओर से ममता के खास रहे मदन मित्र के बीच मुकाबला था। अर्जुन सिंह पहले टीएमसी से 4 बार यह सीट जीत चुके थे, हाल में बीजेपी में आ गए थे और फिर वे बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। सबसे ज्यादा हिंसा, बम फोड़े गए और कई जगह झड़पें हुई, लाठीचार्ज हुआ, वहीं हिंसा की खबरें आई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पीएम तिवारी। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में आज जो मतदान हुआ वहां पर आज भी जो है हिंसा कुछ चरणों में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर मतदान हुआ, इनमें वाराणसी सीट भी थी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आज कौन कौन सी सीटें थी जहां पर बड़े नामों का भविष्य दांव पर था?
जी आज बड़े नाम वाली कई सीटें थी और मुझे लगता है कि जो आपने बता ही दिया कि सबसे बड़े नाम वाली सीट वाराणसी थी। प्रधानमंत्री खुद उम्मीदवार है वहां से और उनको टक्कर दे रहे हैं अजय राय कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन से शिवानी यादव। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
जी लगता है हमारे सहयोगी समीरात्म मिश्र से हमारा संपर्क टूट गया है, तो वो जानकारी दे रहे थे कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गोरखपुर सीट पे भी किस तरह से आज मतदान हुआ। तो इसके साथ ही बिहार की भी 9 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए और हमारी सहयोगी सीटू तिवारी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने सातवें चरण के लिए आज सीजर रिपोर्ट भी जारी की। आइए सुनते हैं कि क्या जानकारी दी चुनाव आयोग ने।
The total cash seizure has been ₹839.03 crores.
चुनाव आयोग की के जो अधिकारी हैं वो ये जानकारी दे रहे थे कि 893 करोड़ रुपए की नकदी, 294 करोड़ रुपए की शराब, 1270 करोड़ रुपए के ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाएं, 986 करोड़ रुपए का सोना चांदी और 58 करोड़ की अन्य चीज़ें जो कि तोहफों के तौर पे दी जाने वाली थी वो चीज़ें जब्त की गई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस, आपका स्वागत है। लेकिन पहले अदिति जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतदान संपन्न हो गया, सातों चरण का जो भी चल रहा था सब वोटिंग हो गई, अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, चुनाव प्रचार हुआ, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला, सब चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया, किस तरह से देखती हैं आप इस सबको?
देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सब लोग एक गहरी सांस ले रहे होंगे कि चुनाव का मतदान ख़त्म हो गया है। ये बहुत लंबा अरसा था और गर्मी भी बहुत थी
जी।
तो लोग मेरे ख्याल से थोड़ा सा पस्त हो गए थे चुनाव के कैंपेन पीरियड के अंत तक। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर किसी तरह का अगर एक आदमी इस पर चुनाव पर हावी रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी।
चुनाव का जो एजेंडा था वो उन्होंने सेट किया, उनके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत हुई और मेरे ख्याल से दूर दराज इलाकों में भी और शहरों में भी मोदी जी पूरी तरह से छाए हुए थे
जी। इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये तो 23 तारीख को हमें पता चल ही जाएगा। हमारी सहयोगी सीटू तिवारी पटना से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीटू, आप तक आवाज़ आ रही है?
जी, आज आदर्श जी आ रही है
जी। तो आज कौन कौन से, आज तो वहाँ पे काफी बड़े चेहरे थे चर्चित चुनाव मैदान में।
देखिए, आज यहाँ पे 4 केंद्रीय मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे थे जिसमें रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, आर के सिंह, अश्विनी चौबे थे। सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो रही वो पटना साहिब रही जिसमें रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार फूल का यानी कमल का हाथ छोड़ करके उन्होंने हाथ को थाम लिया। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 53.55% जो है वोटिंग परसेंटेज है। पटना साहिब सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वहां पे सिर्फ 43.54% वोट हुआ है। 2014 के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2015 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में भी सबसे कम वोटिंग अगर आज की 8 सीटों के कंपैरिजन में या तुलनात्मक तौर पे जाए तो सबसे कम वोटिंग जो है वो पटना साहिब सीट पर ही हो रहा है। कुल आज मतदान के दौरान 77 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो सबसे ज्यादा मामला चर्चा में रहा वो लालू प्रसाद के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव का और जो मीडिया कर्मी है उनकी झड़प का पूरा मामला सामने आया। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनका जानलेवा हमला हुआ जिसके बाद उनके बाउंसर्स ने कुछ मीडिया वालों की फोटोग्राफर्स की पिटाई भी कर दी। इसके अलावा पटना के दुल्हिन बाजार में बोगस वोटिंग को लेकर के एक मामला हुआ जिसके कारण मतदान कुछ देर रुका रहा। 6 राउंड फायरिंग भी हुई। गया, नालंदा में तो वोट बहिष्कार लोग चंदौरा नाम के गांव में कर रहे थे और यहां पे बीडीओ ने जब आकर के आंगनबाड़ी सेविका से वोट मतदान डलवा लिया तो बीडीओ को बंधक बना लिया गया। लेकिन बाद में यहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा, सिर्फ एक वोट जो आंगनबाड़ी सेविका ने डाला था वही पड़ा। इसी तरह भोजपुर में भी, सासाराम में भी, जहानाबाद में भी पुलिस बल और लोगों के बीच में पथराव और हंगामे की खबरें हैं। बक्सर में भी वहां 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तो इस तरह की खबरें जो है वो जगह जगह से छुटपुट घटनाएं जो है वो पुलिस सामने आई
जी। बहुत बहुत शुक्रिया सीटू तिवारी जानकारी दे रही थी कि आज बिहार में जो आज के चरण के तहत मतदान हुआ वहां पर किस तरह की खबरें आई। कुछ जगहों से हिंसा की, छुटपुट हिंसा की भी खबरें आई। और अब बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। जैसे ही 7वें और आखिरी चरण का मतदान थमा, एग्जिट पोल दिखाने से पाबंदी हटी और इस समय लगभग सभी चैनल और जो अपना सर्वे हैं एजेंसियों के साथ जो उन्होंने किया है वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो वो क्या रह सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में लौटेंगे या फिर इस बार जनता किसी और को मौका देगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपका स्वागत है।
जी आदर्श,
अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं तो वो क्या अनुमान लगाया जा रहा है उनमें?
देखिए, अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से सब में लगभग एनडीए सबसे बड़े एक गठजोड़ के रूप में सामने आया है। कुछ ने उनको 300 तक सीट दे दी है लेकिन जो कम से कम है वो भी लगभग 240, 267, 280 और 300, मतलब इस रेंज में सीटें दी जा रही हैं उनको। इसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इससे कम हो जाती है क्योंकि पिछली बार 340 के आसपास का उनका पूरा एनडीए का आंकड़ा था। इसके मुकाबले अगर यूपीए को देखते हैं तो यूपीए करीबन 120 से 150 की रेंज में यूपीए की सीटें दी जा रही हैं और जो अन्य पार्टियां हैं वो तकरीबन 120 से 140 की रेंज में इन लोगों को सीटें दी जा रही हैं। इसमें खास तौर पे उत्तर प्रदेश पे लोगों की नजरें काफी लगी हुई थी। अब ये देखिए, ये सारे एग्जिट पोल्स हैं और एग्जिट पोल्स को लेके हमें पता है कि किस तरीके से एक ये रहा है कि हमेशा सही नहीं होते हैं बल्कि एक दो ही कई बार ऐसे होते हैं कि सही होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखेंगे तो एनडीए को जैसे एबीपी एक चैनल जो है वो उसने नीलसन के साथ सर्वे किया है तो वो 22 सीटें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा उसका छोर जो है वो रिपब्लिक टेलीविजन है जो जिसने जन की बात के साथ जो सर्वेक्षण किया है वो 46 से 57 सीटें तक दे रहा है। टाइम्स नाउ जिसने वीएमआर के साथ किया है वो 58 सीटें तक दे रहा है। यानी रेंज इतनी ज़्यादा दे दी गई है कि इसमें किसका सही होना ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से पहले ये बात की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, वो महागठबंधन जो कुल सीटें दोनों तरफ की जो दो वोटर्स होते हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो फर्क पड़ता है। तो लेकिन एक चीज जरूर तय कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से काफी कम सीटें आने वाली हैं। अगर 50 आती हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिस समय 1990 के दशक में बनी थी उस रेंज में चले जाएंगे, और अगर उससे भी नीचे आ जाते हैं तो ये सोचिए कि ये जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कहां से हो रही है, ये देखने वाली बात।
जी अदिति जी, जिस तरह से ये कयास लगाए जाने जो बताया कि जो अनुमान है, कितने भरोसेमंद माना जाए इस तरह के एग्जिट पोल्स को?
देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में जो एग्जिट पोल्स का पूरी तरह से मतलब धराशायी प्रदर्शन था, कोई भी एग्जिट पोल सही नहीं था उन चुनाव के प्रेडिक्शंस में, तो वो सबसे बड़ा एक हमको हमारे लिए एक बेंचमार्क है कि एग्जिट पोल कितना गलत हो सकती हैं। हाँ, ये भी सही है कि 2014 में कई एग्जिट पोल्स ने लगभग 10 या 5 एक एरर मार्जिन लेके काफ़ी एक्यूरेटली सही तरीके से उसको उसका नतीजा बताया था। लेकिन हम फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अभी मुकेश जी ने जिसका जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में जो वेरिएंस है वो हमें दिखाता है, ये दर्शाता है कि एग्जिट पोल्स कितना मतलब कितना रेंज है एग्जिट पोल्स का और वहाँ पर किस तरह की राजनीतिक जटिलताएं हैं।
जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि पिछले 4 जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें जब नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल्स आए थे अलग अलग चैनलों के एजेंसियों के, वो क्या बता रहे थे?
जी आदर्श, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो सबसे ताज़ा चुनाव दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के हुए हैं, जहां एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुआ है। मेलकम मार्शल फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहां एग्जिट पोल्स में बताया गया था कि लेबर पार्टी बहुमत लेकर आ रही है। और जहां तक भारत की बात की जाए तो एग्जिट पोल्स के अनुमानों को सटीक नहीं कहा जा सकता है और कई बार ये गलत साबित हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 की बात करें तो अलग अलग समाचार चैनलों और एजेंसियों का अनुमान असल नतीजों जैसा रहा था। अधिकतर एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया गया था कि एनडीए सत्ता के करीब रहेगा। नतीजे आए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले आई और एनडीए को 336 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें लाई थी। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन था। इससे पहले के चुनाव यानी 2009 और उससे पहले 2004 में हुए चुनावों के एग्जिट पोल नतीजों का सही अनुमान लगाने में नाकामयाब रहे थे। 2009 में अधिकतर एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि यूपीए की सीटों की संख्या एनडीए से अधिक होगी, मगर किसी ने यह अंदाज़ा नहीं लगाया था कि कांग्रेस 200 पार कर जाएगी। 2009 के चुनाव परिणामों में यूपीए को 262 और कांग्रेस को अकेले 206 सीटें मिली थी। थोड़ा और पीछे चलें तो 2004 में आए एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए थे। उस समय अधिकतर चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में यह अनुमान लगाया गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए फिर सत्ता में लौटेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये इंडिया शाइनिंग के नारे का दौर था। एनडीए को आई 189 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 222 सीटों पर जीत हासिल हुई। उस समय यूपीए सत्ता में आया था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, मगर इससे पहले 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आए ज़्यादातर एग्जिट पोल्स का अनुमान काफ़ी हद तक सही रहा था। इनमें अनुमान लगाया गया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 200 से कम सीटों में सिमट जाएगा। नतीजे आए तो बीजेपी और सहयोगी दलों को 252 और कांग्रेस के सहयोगी दलों को 166 और अन्य को 119 सीटें मिली थी। यानी पिछले 4 लोकसभा चुनावों को देखें तो एग्जिट पोल 2 बार सही और 2 बार गलत साबित हुए हैं। 5वें वाले पे सुई बीच में अटकी हुई है, देखेंगे आगे क्या होगा।
23 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि और 2004 की इन्होंने बात की थी, उस वक्त तो बहुत ही गलत हो गए थे, तो ये क्यों होता है ऐसा कि कई बार तो ये एग्जिट पोल जो होते हैं वो सही रहते हैं और कई बार जो हैं वो बहुत ही गलत हो जाते हैं?
देखिए, ये एक बहुत ही टेक्निकल कला है और इसका गुर कोई मेरे ख्याल से इस सम अब आज तक कहीं भी विश्व में पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया है। हमारा देश वैसे भी असमानताओं से भरा हुआ है
जी।
इतनी जटिलताएं हैं, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने लोग हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज कहाँ तक सही हो सकती है, संभव नहीं है मेरे ख्याल से। तो तो एक डायरेक्शन दिखा सकती है, एक दिशा निर्देश हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल मेरे ख्याल से कहीं भी कभी भी पूरी तरह से शतशः सही नहीं हुई है आज तक।
तो ये लगता है कि जो चुनाव का माहौल का एक अपना आनंद होता है, तो उसमें भी एक थोड़ा एक रोमांच का फैक्टर जोड़ देते हैं बस।
निश्चित रूप से, और मेरे ख्याल से लोग ये भी निर्णय करते हैं कि चलिए थोड़ा बहुत गलत या सही हो भी, तब भी एक दिशा पकड़ लेंगे लोग, खासतौर से जो निवेशक हैं या स्टॉक मार्केट में जो लोग जिनकी डीलिंग्स होती हैं, उनके लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि वो अपने निवेश की दिशा तय कर सकें आगे आने वाले समय के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज और मुकेश शर्मा जी। और अब 23 मई को जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन हमारा होगा विशेष कार्यक्रम, जानिए क्या होगा खास।
2019 का सबसे अहम दिन 23 मई,
इस दिन तय होगी अगली सरकार,
देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री,
मोदी लौटेंगे या फिर कोई और आएगा,
एनडीए की ज्यादा सीटें आएंगी या यूपीए की,
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कितनी सीट जीतेगा,
बंगाल से क्या जनादेश निकलेगा,
इन सभी सवालों के जवाब, चुनावी नतीजे और सटीक विश्लेषण बीबीसी हिंदी रेडियो पर
शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम दिन भर प्रस्तुत करेंगे
रूपा झा,
रेहान फजल,
राजेश जोशी
और सुशीला सिंह।
बीबीसी हिंदी रेडियो फेसबुक और यूट्यूब पर।
और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां आज 13 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, मगर पंजाब से आज जो खबर आई वो कांग्रेस के खेमे से आई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खटपट की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह ने आज ये कहा कि उनके कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें वैसे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है। सुने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए क्या कहा पंजाब के मुख्यमंत्री ने।
मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी, पार्टी जो लड़ रहे हैं उन पे पड़ेगा।
क्या इलेक्शन के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है सर उनके खिलाफ?
इट इज फॉर द सेंट्रल नाउ लीडरशिप टू टेक नोटिस ऑफ दिस। जो अखबारों में मैंने देखा है कि उन्होंने नोटिस लिया है, एंड दे विल प्रॉब्ली आफ्टर दिस इलेक्शन, अभी तो 1-2 दिन तो इसी में फंसे रहेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे जरूर। आई एम श्योर दे विल लुक एट इट
सर। ओवरऑल चुनाव के
बिकॉज कांग्रेस पार्टी डज नॉट बिलीव इन इनडिसिप्लिन, मैंने बहुत देखा है, मुझे 50 साल हो गए, आई हैव सीन इट, एंड दे will not accept things where you can damage the party.
आखिर अमरिंदर सिंह ने ये बयान क्यों दिया? वो सिद्धू की किस बात से नाराज हैं और उनका आलाकमान से कार्रवाई की मांग करना क्या दिखाता है? ये जानने के लिए मैंने बात की बीबीसी पंजाबी के संपादक अतुल संगर से।
नवजोत सिद्धू चाहते थे और उनकी पत्नी भी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, वो चाहती थीं कि चंडीगढ़ से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उसके बाद में काफ़ी विवाद भी हुआ, वो नाराज़ भी चल रहे थे, उन्होंने इस बारे में नवजोत सिद्धू ने भी बयान दिए थे। उसके बाद में जब वो बाकी के भारत में प्रचार कर रहे थे लेकिन पंजाब में नहीं आए, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो नाराज़ हैं, और हालांकि उनकी पत्नी ने ये कहा कि वो नाराज़गी की बात नहीं है, वो जहाँ जहाँ पे उनकी मांग है, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस चाहती है कि वो प्रचार करें तो वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद जब वो चुनाव प्रचार बंद होने से 2 दिन पहले पंजाब में आए, बल्कि 3 दिन पहले पंजाब में आए, तो वो बठिंडा में उन्होंने, बठिंडा की एक हॉट सीट है जहाँ पे हरसिमरत कौर बादल जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो लड़ रही हैं और कांग्रेस के राजा वड़िंग उनके सामने मैदान में हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए उन्हें एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट करते हुए खबरें आईं कि वो कह रहे हैं कि ये तो जो लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, मैं उनकी जो गेम है वो एक्सपोज करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे पूरी तरह से कांग्रेस को जिताना चाहता हूँ, और इस तरह की बातें उन्होंने कहीं। इसके बाद ये कयास लगाने लगे लोग, ये कयास लगा रहे थे और मीडिया भी, कि सिद्धू ने सीधा जो कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप है यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में ये बयान दिया है, और किसी तरह से उन्होंने ये इशारा किया है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है यानी अमरिंदर सिंह और जो अकाली टॉप लीडरशिप है यानी बादल परिवार, उनके बीच में कोई किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है।
इन दोनों नेताओं के बीच में पहले भी बयानबाजी होती रही है, लेकिन अब अमरिंदर सिंह का ये कह देना कि अब आलाकमान ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई होगी, खुलकर उन्होंने बयान दिया है इस माहौल में, तो क्या लगता है कि दोनों के बीच में जो आपसी तकरार है, खींचतान है, वो कहां तक पहुंच गई है? अब लगता है कि आलाकमान को दखल देना पड़ेगा?
क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतना खुल के बयान दिया है, इसलिए आलाकमान के लिए ये मुश्किल होगा कि इसको इग्नोर कर दिया जाए पूरी तरह से। इसलिए वहां से कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी, या कम से कम उसका संकेत ज़रूर दिया जाएगा। जो अंततोगत्वा इसमें कार्रवाई होती है और किस हद तक होती है, ये तो देखने की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से इस समय कांग्रेस पार्टी इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती जिसमें ये ऐसा नज़र आए कि सिद्धू को उन्होंने बिल्कुल एक कॉर्नर कर दिया है और वो अमरिंदर सिंह के ही साथ हैं केवल।
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बयान क्यों दिया, इसको लेकर बता रहे थे हमारे बीबीसी पंजाबी के संपादक अतुल संगर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस। आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन जो बड़े नेता होते हैं, सीनियर नेता होते हैं, वो नाजुक समय जब वोटिंग चल रही हो उस समय इस तरह के बयान, चाहे मतभेद कितने भी हों, बचते हैं, लेकिन क्या लगता है कि अब इन दोनों के बीच में जो हम लंबे समय से देख रहे थे खींचतान, क्या वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भविष्य में कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है पंजाब में?
देखिए, हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़े, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस में लगातार इस तरह की झड़प होती रही है। इसके पहले भी कई ऐसे नेता थे, जगमीत सिंह ब्रार थे और भी अन्य नेता थे जिन्होंने कि बार बार अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री या जो प्रदेश की लीडरशिप है उस पर एक तरह से धावा बोला हो। अब जो हो रहा है वो भी कोई अप्रत्याशित नहीं है। नवजोत सिद्धू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, जब वो इधर आए तो ऐसा होना स्वाभाविक था, कुछ लोगों की जगह उन्होंने ली और उन लोगों को विस्थापित किया एक तरीके से, तो जाहिर है कि चुनौती मुख्यमंत्री को ही दे रहे हैं, और हो सकता है कि उन दोनों में आपस में कोई बातचीत हुई हो जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भी अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नवजोत सिद्धू को लाने में प्रियंका गांधी का एक बहुत बड़ा हाथ था, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री अपने आप को लगता है कि उनको लग रहा है कि उनकी परिस्थिति डावाडोल हो रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति फडणीस जी। और अब रुख करेंगे हम राजनीति की खबरों से हटकर खेल की दुनिया का, और खेल की खबरों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
जी आदर्श, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसी महीने जिस तरह से इंग्लैंड में 30 तारीख से ICC विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, उससे पहले इंग्लैंड के लिए जो परीक्षा की घड़ी थी वो थी पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज, जिसका आखिरी मैच आज लीड्स में खेला जा रहा है, जहां थोड़ी देर पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 351 रन बनाए। यान मॉर्गन ने 76, जो रूट ने 84, जेम्स विंसी ने 33 और जॉनी बेयरस्टो ने 32 रनों का योगदान दिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज इस समय पूरी फॉर्म में हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह का स्कोर उन्होंने बनाया उससे उनका आत्मविश्वास विश्व कप में बढ़ेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी। और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। भारत की 17वीं लोकसभा के लिए 7वें और आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 59 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा में पिरामिडों के पास सैलानियों की एक बस में धमाके की खबर है। धमाके में 17 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि हमले के पीछे किसका हाथ है। सूडान मिलिट्री काउंसिल की उपाध्यक्ष मोहम्मद हमादान ने कहा है कि सोमवार को प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की जानी मानी एथलीट दुती चंद ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो समलैंगिक हैं और अपने गांव की एक लड़की के साथ रिश्ते में हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भपात पर हो रही बहस के बीच कहा है कि वो बलात्कार या मां की सेहत को होने वाले खतरे के अलावा बाकी सभी मामलों में गर्भपात के खिलाफ हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।